بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه، يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله. الصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. قام ما بعد، ثم انفعنا بما علمتنا وعلمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. أم ندنا أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آل یہاں سے اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کے واقعے شروع اور یہاں سے لے کر جو ہمارے پاس رکوع وہاں راز میں بیان فرمایا، اور اس کے بعد اس کی تھوڑی وحید وضاحت بیان فرما دی. آگے قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے سے پہلے میں واقعہ کا خلاصہ بتا دوں تاکہ آیات سمجھنے میں مدد ملے. آگے قرآن میں واقعہ تو بیان کر ہی دیا ہے، تو پھر تو اس کے ساتھ سب آیاتوں کے ساتھ چلتے رہیں گے، لیکن واقعہ کے ایک بنیادی خاکہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ کیا واقعہ پیش آیا تھا. اس میں کچھ باتیں وہ ہوں گی جو قرآنی آیات میں بھی آگے آ رہی ہیں، کچھ باتیں وہ ہوں گی جو تاریخی ہیں، تاریخ کی کتابوں سے یا اسرائیلی روایات سے ماخوذ ہیں. بہرحال ایک تاریخی لحاظ سے ایک واقعہ میں بتا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو واقعے کے سلسلے میں باتیں کہی ہیں وہ پھر انشاءاللہ پڑھ لیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کے یعنی اصحاب کہف کا واقعہ جب شروع فرمایا تو اصحاب الکہف والرقیم دو لفظ استعمال فرمایا، ایک اصحاب الکہف، ایک اصحاب الرقیم. جمہور مفسرین کی رائے تو یہ ہے کہ اصحاب الکہف اور اصحاب الرقیم یہ ایک ہی جماعت تھی اور ایک ہی جماعت کے دو نام تھے. اصحاب الکہف ان کو کہا جاتا ہے اس لیے کہ کہف کے معنی ہیں ایسا غار جو ذرا کشادہ ہو. عربی زبان میں بھی لفظ غار استعمال ہوتا ہے، قرآن میں بھی آیا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں تھے تو غار کا تذکرہ وہاں پر بھی آتا ہے، قرآن میں بھی ذکر ہے. تو لفظ غار یہ بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اور کہف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور فرق یہ ہے کہ کہف ذرا کشادہ اور وسیع ہوتا ہے اور غار تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے. تو ان کو اصحاب الکہف کہا جاتا ہے، اس لحاظ سے تو بات واضح ہے کہ چونکہ ان لوگوں نے ایک عرصہ گزارا غار کے اندر کہف کے اندر، اس لحاظ سے ان کو اصحاب الکہف کہا جاتا ہے. نام اس لحاظ سے ان کا بالکل معقول ہے اور سمجھ میں آتا ہے. دوسرا جو نام ان کے لیے استعمال کیا گیا ہے الرقیم، اس کی وجہ تسمیہ کہ کیوں ان کو اصحاب الرقیم کہا جاتا ہے، اس میں مفسرین کا محدثین کا کلام کافی پایا جاتا ہے اور مختلف اس بارے میں آراء ہیں علماء کی. اس میں چند جو مشہور قول ہیں یا جو راجح اقوال ہیں ان کو میں بتا دیتا ہوں. رقیم رقمہ کے معنی ہوتے ہیں کتبہ، لکھنا، اور رقیم فعیل کے وزن پر یہ لفظ جب آیا ہے رقیم، اس کے معنی ہے یعنی لکھا ہوا، مکتوب کے معنی میں ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اصحاب الکہف ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام لکھ کر لگا دیے گئے تھے یا لکھ لیے گئے تھے. واقعہ اس کا یہ ہوا تھا کہ اصحاب الکہف ان کے ساتھ جب واقعہ پیش آیا جس کو میں آگے بتاؤں گا، تو جب یہ غائب ہو گئے تھے اور غار میں چلے گئے تھے، اس زمانے میں جو حاکم تھا، بادشاہ تھا، اس نے क्योंकि ये हैरत अंगेज तरीके से गायब हुए थे और तलाश के बावजूद मिल नहीं सके, तो उस जमाने का जो हाकिम था, बादशाह था, उसने एक तख्ती पर इनके नाम लिख लिए और नाम लिखकर एक जगह महफूज कर लिए थे कि ये वो लोग थे, इस नाम के, इस खानदान के ये इतने अफराद थे जो इस जमाने में गायब हुए और तलाश के बावजूद नहीं मिल सके, उनके नाम एक जगह लिखकर महफूज कर लिए थे। और फिर वो तो उनके नाम महफूज हो गए, इस लिहाज से बाज़ों ने कहा कि इनको असहाबुर रकीम कहा जाता है। फिर बहरहाल जब वाकया पेश आया, जब अल्लाह ताला ने उनको दोबारा बेदार किया, बेदार होने के बाद जब वो दोबारा उनका इंतकाल हुआ और उनको दफन किया गया था, तो दफन करने के बाद भी फिर उनके नाम लिख कर एक जगह लगा दिए गए थे उनकी कब्रों के पास, तो उस वक्त भी उनके नाम लिख कर एक मकतूब, एक तख्ती पर लिख कर लगा दिए गए थे। बाज़ों ने कहा उस एतबार से उनको असहाबुर रकीम कहा जाता है। बहरहाल रकीम के माना मरकूम यानी मकतूब, लिखा हुआ, वो लोग जिनके नाम लिख दिए गए थे एक तख्ती पर, तो वो लोग जो असहाबुल कहफ थे और वो लोग जिनके नाम तख्ती पर लिख लिए गए थे, ये वो लोग हैं। ये है रकीम के माना, जिनके नाम तख्ती पर लिखे गए थे। इसके अलावा और अकवाल कई हैं। बाज़ों ने कहा जो कुत्ता उनके साथ हो गया था वो रकीम था, तो असहाबुल कहफ भी थे, असहाबुल रकीम भी थे। बाज़ों ने कहा जिस इलाके में वो रहते थे, जिस शहर में, जिस आबादी में वो रहते थे, उस इलाके और शहर का नाम यानी उस शहर का नाम जो था वो रकीम था, किसी ज़माने में बाद में नाम बदल गया और अब तो खैर रकीम नाम की वो जगह नहीं मिलती। खैर इस बारे में बहुत से मुख्तलिफ अकवाल पाए जाते हैं। इतना है कि उनको असहाबुल कहफ और असहाबुल रकीम कहा गया है। इनके वाकया क्या हुआ? तारीखी एतबार से अगर देखें तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन 100 साल के बाद, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन 100 साल के बाद सन 100 यानी आजकल अभी चल रहा है 2018 चल रहा है, और कभी कभी इसमें भी शुबा हो जाता है कौन सा साल चल रहा है, इसलिए कि अरबी की तारीख, अरबी और इंग्लिश और हर साल यानी इतनी तेज़ी से साल गुजरता जा रहा है कि याद भी नहीं रहता कि अब 17, 18, 19, अब थोड़ा से में 19 हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो खैर ये 2018 चल रहा है, उस एतबार से देखें तो सन 100 की बात है। सन 100 उस जमाने में ये वाकया पेश आया था, तारीख एतबार से अगर देखें उस जमाने में ये वाकया पेश आया था। और 300 साल, चूंकि इनका वाकये की तारीख जो है वो तकरीबन 300 साल की मिलती है, तो सन 100 से लेकर 400 के दरमियान का ये वाकया है, या उसके करीब करीब तकरीबन 250 से लेकर 250, 250 से लेकर तकरीबन 550, 550 इस ज़माने का, यानी करीब करीब ईसा अलैहिस्सलाम के बाद बहुत ज़्यादा ज़माना नहीं गुजरा था, 100 साल गुजरे थे या तकरीबन 250 साल गुजरे थे उसके बाद से 300 साल के दरमियान के वक्फे का ये वाक़िया है। वाक़िया ये हुआ, ये इलाका था, एक इलाका था, वहाँ उनकी अपनी हुकूमत, बादशाह जो था वो भी मुशरिक और बुतपरस्त था, वहाँ के लोग भी बुतपरस्त थे, बल्कि हाकिम और वहाँ का जो बादशाह था उसकी जानिब से बुतपरस्ती लाजिम ज़रूरी थी, यानी कोई शख्स उस मजहब के अलावा दूसरा मजहब इख्तियार नहीं कर सकता था। हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना करीबी गुजरा था और ईसा अलैहिस्सलाम के मजहब की तालीमात अभी तक लोगों में जाहिर के पहुंच रही थी, मालूम था उसको कि दीन हक, ईसा अलैहिस्सलाम का मजहब यानी तौहीद का मजहब भी उन तक किसी दर्जे में पहुंचा था और कुछ ना कुछ ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले लोग उस इलाके में भी हुआ करते थे। लेकिन बहरहाल वो बादशाह वो भी बुत परस्त था और वहाँ के इलाके के मानने वाले वो भी सब बुत परस्ती किया करते थे, और बादशाह की तरफ से लाजिम था, कोई मुवाहिद नहीं हो सकता, अगर कोई उनके मजहब से हटा और बुत परस्ती से निकला तो बादशाह की तरफ से उसकी सज़ा कत्ल, उससे कम सज़ा नहीं थी। अब कत्ल किस तरह किया जाता उसमें भी बड़े अजीब अजीब उनके वाकयात होते थे।
बहरहाल इनका सालाना एक जगह जमा होने का मौका आया। सालाना गोया उनका इज्तिमा हो रहा था, और उस वक्त तमाम लोग जमा हुए और अपने अपने तौर से, कोई बुतों की इबादत कर रहा है, कोई किसी चीज़ की इबादत कर रहा है, जो भी बुत परस्ती का उनका तरीक़ा था और उनके जो खिलाफ़ अक़ल जो उनकी हरकतें थीं, उन हालात में कुछ नौजवान थे, उन्होंने देखा कि ये सब बातें जो हो रही हैं, बुतों की इबादत वगैरह, ये सब जो काम हो रहे हैं, ये अक़ल में आने वाली चीज़ें तो नहीं हैं। तो एक नौजवान था, वो उस कौम से अलग होकर एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया। इतने में थोड़ी देर हुई, एक दूसरा आया, वो जाकर बैठ गया, तीसरा, ये चंद लोगों की एक जमात बन गई। ये तकरीबन 7 अफराद होंगे, यकीनी तौर पर तो कुछ कहना मुश्किल है। ये तकरीबन 7 अफराद होंगे, ये एक जगह जाकर जमा हो गए। लेकिन बादशाह की तरफ से, चूंकि बुत परस्ती एक वहाँ का लाजमी मज़हब था और उसकी खिलाफ वर्जी की सज़ा कत्ल थी, तो इसलिए कोई बता नहीं सकता था कि मुझे बुत परस्ती पसंद नहीं। खैर, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, और मेला ख़त्म हो गया, जो उनका इज्तिमा तुजा जो था वो ख़त्म हो गया, लोग चले गए, ये लोग बैठे हुए हैं। अब बहरहाल तीसरा दिन हुआ या कोई दिन हुआ, तो उन्होंने आपस में तय किया कि चलो अब हम आपस में ये तय कर लेते हैं, मुआहदा करते हैं कि हर शख्स अपने दिल की बात दूसरे को बताए, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो बात सिर्फ हम तक महदूद रहेगी, ये बात बाहर किसी तक ना जाए, सिर्फ आपस में हम एक दूसरे की राज की बातें एक दूसरे को बता दें। मुआहदा पक्का हो गया, कोई इन से बाहर कोई बात नहीं निकलेगी, आपस में एक दूसरे पर एतमाद भी हो गया, जैसे कि चंद दिन गुजर गए थे, 2-3 दिन हो चुके थे साथ, तो एतमाद भी बन गया। अब बहरहाल इन्होंने आपस में बातचीत करनी शुरू की। एक ने कहा कि देखो, असल में मैंने जब देखा कि लोग पत्थरों से कोई चीज़ बनाते हैं, फिर उसकी इबादत करते हैं, उसको अपना खुदा मानते हैं, मेरी अकल तो इसको कबूल नहीं करती, मुझे सब अजीब लग रहा है, हर चीज़ बुरी लग रही है, इसलिए मैं उनसे अलग हो गया हूँ, मुझे ये बातें सही नहीं लगती, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे यानी एक अल्लाह की इबादत वही असल मजहब होना चाहिए। अब किस हद तक उनको ईसाइत का इल्म था नहीं था, वल्लाहु आलम, बहरहाल इतना था कि बुत परस्ती से वो लोग बेजार हो चुके थे। जब एक ने ये बात कही हिम्मत करके, तो दूसरे ने कहा कि मेरा भी यही ख्याल है और मैं भी इसीलिए उन लोगों से अलग हो गया। तीसरे ने कहा कि हाँ यही बात है। बहरहाल पता चला कि सबके जहन में करीब करीब एक ही बात थी कि वो उस बुत परस्ती को नापसंद कर रहे थे और मजहब तौहीद को इख्तियार करना चाहते थे। खैर, ये इनका आपस में जोड़ हो गया, यहाँ से उनकी दोस्ती की गोया इब्तिदा हो गई। कुछ अरसा गुजरा, कुछ अरसे तक तो बात छुपी रहती है, आपस में मुआहदा भी हो गया था, कुछ अरसा गुजरा, आहिस्ता आहिस्ता बात बादशाह तक पहुंच गई। उस जमाने का जो बादशाह था, हाकिम था, उसका नाम हमारी उर्दू और अरबी की तफासीर में दकियानूस बयान किया जाता है। इंग्लिश वगैरह की किताबों में हेड्रिन वगैरह के नाम से नाम मिलता है, हो सकता है वही हो, दकियानूस उसका नाम बयान किया जाता है। ये दकियानूस जो था, ये वही था जिसके बारे में मैंने बताया कि पक्का बुत परस्त और उस पर लोगों को मजबूर करने वाला। खैर, हाकिम तक, बादशाह तक बात पहुंची, बादशाह ने इन सबको बुलाया, उनको बताया कि देखो, अगर बुत परस्ती करोगे तो हमारे पास बुत परस्ती की यानी असल तो यही मजहब है हमारा, और अगर तुम तौहीद इख्तियार करोगे तो हमारे पास देखो, एक अल्लाह को मानना और बुत परस्ती से इनकार करना और हमारे मजहब से निकलना, इसकी सज़ा कत्ल से कम नहीं है, तो तुम लोगों के लिए यही सज़ा होगी, इसलिए अभी से सोच समझ के बात करो और बाज आ जाओ। इन्होंने कहा, नहीं, रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ध लन नदउअ मिन दूनिही इलाहा लक़द कुलना इदन शतता, आगे आयतों में उसका जिक्र आ रहा है। बादशाह ने सोचा कि अभी नौजवान हैं, इसको कहते हैं शबाब व शुअबतु मिन अल जुनून, कि अभी नौजवान हैं, अभी जोश है, बात पूरी तरह समझे नहीं होंगे, अभी तक डरे नहीं होंगे। चलो इनको थोड़ी सी मोहलत दे दी जाए। क्या हुआ, आवाज कट रही है या आवाज नहीं आ रही? अच्छा, तो खैर बादशाह ने सोचा कि इनको कुछ ऐसा मोहलत दे देते हैं। 3 दिन की मोहलत दी गई उनको। तो खैर देखते हैं, अभी इंशाल्लाह अल्लाह करे कि सही चलता रहे। तो बादशाह की तरफ से उनको फिर 3 दिन की मोहलत दी गई कि 3 दिन तक तुम लोग सोच लो, अगर उस दौरान तुम्हारा अगर ख्याल बदल जाता है और तौहीद के मजहब की तरफ से तुम हमारे असल मजहब की तरफ आ जाते हो तो ठीक है, वरना तुम्हारे लिए भी सजा कत्ल ही की होगी। इनको मोहलत दे दी गई, वहां से ये लोग निकले। अच्छा, पता नहीं आवाज कटने की क्या वजह होगी। मैं अपने पास से इसको बंद करके फिर चलाता हूँ। अब देखते हैं, शायद आवाज आ जाए। अच्छा, तो बात ये चल रही थी कि बादशाह ने उनको 3 दिन की मोहलत दी कि जाओ कुछ सोच लो आइंदा तुम्हें क्या करना है, और 3 दिन के बाद फिर मेरे पास आना। जब ये लोग बादशाह के पास से निकले तो इन्होंने सोचा कि देखो, इस इलाके में रहकर तौहीद को मानना और हक मजहब को मानना ये तो मुश्किल है। इनके सामने कुछ ना कुछ हो सकता है, पहले अंबिया वगैरह की और सुलहा की तारीख हो, कुछ ना कुछ उन्होंने इल्म हासिल किया हो इस ज़माने में, ईसा अलैहिस्सलाम के मजहब और पहले के जो मजाहिब गुजरे हैं उनकी। तो इन्होंने आपस में यह तय किया कि जब यहाँ पर हमारे लिए दीन पर अमल करना मुश्किल है, बल्कि तकरीबन नामुमकिन है, और जान का भी खतरा है, हो सकता है हमें मजबूर करें और कुफ्र और शिर्क के काम हमसे करवा लें, तो इन्होंने बहरहाल ये तय किया कि हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। आपस में तय किया कहाँ जाए, चलो किसी गार में चले जाते हैं। कुछ थोड़े बहुत चांदी वगैरह कुछ पैसे उनके पास थे साथ लिए, और ये सात अफराद थे या जितने भी थे, यकीनी तौर पर तो खैर नहीं कहा जा सकता, इनके पास कुछ पैसे वगैरह थे, उन्होंने वो पैसे लिए और गार में चले गए। जाते हुए अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह हमारे लिए आसानी और मदद और हिदायत। अल्लाह ताला से दुआएं मांगकर गार में दाखिल हो गए। जब गार में गए, अल्लाह ताला ने जाते ही उनको उन पर नींद मुसल्लत कर दी। 300 साल शमसी, यानी जो इस जो अंग्रेजी और सूरज के लिहाज से जो निज़ाम चलता है उसके एतबार से 300 साल, और कमरी एतबार से चांद के महीनों के एतबार से 309 साल तक वो गार में सोए रहे।
जब उठे और 300 साल के बाद जब उठने का ज़माना आया, जब उठे तो जाहिर है उनको तो नहीं मालूम था कि इतना तवील अरसा ये सोए हैं। जब उठे उस ज़माने में उस शहर का पूरा निज़ाम बदल चुका था। जो दकियानूस था उसकी बादशाहत ख़त्म हो चुकी थी, उसकी जगह एक मुवाहिद बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम के मज़हब का मानने वाला बादशाह जो नेक था सालेह था वो वहाँ का हाकिम बन गया था, जिसका नाम हमारी किताबों में बैदूसीस बयान किया जाता है। अब ये बैदूसीस जो था वो नेक था, उसने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि या अल्लाह लोगों को बादल मौत के बारे में कुछ शुबा हो रहा है, आप कोई वाकया जाहिर फरमा दें जिससे लोगों को इस पर पूरी तरह यकीन हो जाए। अल्लाह ताला ने उस हाकिम की बादशाह की दुआ कबूल की और उस ज़माने में अल्लाह ताला ने अस्हाबे कहफ को जाहिर फरमाया। कैसे जाहिर फरमाया? जब ये उठे तो उठने के बाद पहले तो ये ख्याल हुआ कि शायद एक दिन सोए हम, शायद सुबह सोए थे और अब शाम का वक्त हो गया है। किसी ने कहा नहीं, शायद उससे ज़्यादा सो लिया हमने। फिर बाल नाखून कुछ बढ़ गए थे, कुछ एहसास होने लगा कि नहीं ज़्यादा सोए हैं। तो आपस में कहा चलो अल्लाह ताला ही जानता है कितना अरसा सोए हैं, इस बात को छोड़ो, अब भूख लगी है, कुछ खाने का इंतज़ाम करो। कैसे? सब जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। ताकि एक आदमी चुपके से चला जाए और जाकर एक आदमी चला जाए और जाकर खाना खरीद कर ले आए। उसके बारे में आयात में जब तस्करा आएगा तो वहाँ उसकी मज़ीद वजाहत आ जाएगी। ये शख्स गया, जब वहाँ गया अब जाहिर है देखा कि रास्ते वगैरह भी कुछ बदले हुए लग रहे हैं, कुछ दुकानें भी बदल गई हैं, क्या हो रहा है, बिल्कुल अलग मंजर नज़र आ रहा है। खैर समझा कि पता नहीं मुझे कुछ गलती हो रही है, क्या हुआ है। गया देखा एक दुकान नज़र आई जहाँ खाना मिल रहा था, हलाल वगैरह का तो पता नहीं था कि यहाँ हलाल मिल रहा है या क्या मिल रहा है। अपने लिहाज से जो चीज़ मुनासिब लगी और हलाल मालूम हुई वो ख़रीदने गया। पैसे देने के जब मौका आया तो इसने अपने वो उस ज़माने के दकियानूस के ज़माने का जो दिरहम जो चांदी थी वो दी। दुकान वाले ने कहा, बेचने वाले ने कि ये क्या, ये कौन से ज़माने का तुम पैसे ला रहे हो, अभी का तो है मेरा ये। कि तुम्हारा है कहाँ, मेरा है। अब जाहिर है कि बात खुलनी थी और बात सामने आई कि नहीं, ये अपने पैसे हैं और अभी इस्तेमाल कर रहा है, 300 साल पुरानी पुराने ये कॉइन इस्तेमाल कर रहा है। बहरहाल बात सामने आ गई कि ये तो अभी का आदमी नहीं है, ये तो 300 साल पहले का आदमी है। अब बात जाहिर है फैलनी शुरू हुई, मजमा हो गया और बात फैलनी शुरू हुई और किसी ने हाकिम तक भी बात पहुंचा दी कि 300 साल पुराना कोई शख्स है जो अब जाहिर हुआ है और वो यहाँ पर हमारे पास कोई खाना खरीदने आया है। हाकिम वो बहुत खुश हुआ, उसने कहा अच्छा मुझे तो इंतज़ार था। पुराने ज़माने का एक हाकिम था, उसने एक तख्ती पर नाम लिख कर लगाए थे कि कुछ लोग गायब हो गए हैं और उसको 300 साल तकरीबन हो चुके हैं, हो सकता है कि ये वही लोग हों। बुलाया, उससे बात की, मालूम किया कौन कौन साथी हो, कितने हो। वो पूरे जो फहरिस्त बादशाह के पास जो तख्ती पर नाम लिखे हुए थे रकीम, वो तख्ती जिस पर इनके नाम लिखे हुए थे वो तख्ती निकाली, नाम पढ़े और इससे पूछा, कहा कि हाँ हम वही लोग हैं। पूरा वाकया सुना हाकिम ने, जो बैदूसीस जो हाकिम था उसने उनका पूरा वाकया सुना। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने वाकया जाहिर किया। जाहिर है उसके ज़माने के लिए एक बहुत बड़ा एहसास था कि उसके होते हुए अल्लाह ताला ने इनका जुहूर फरमाया। खैर हाकिम उसने कहा मैं खुद जाकर उन लोगों से मिलना चाहता हूँ, तुम्हारे बाकी साथियों से मैं खुद चल कर तुम्हारे साथ आकर उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। इसने कहा वो लोग घबरा जाएंगे, डर जाएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, हम साथ साथ चलते हैं, आप आगे चलिए, जाकर उनको बता दीजिए और हम आकर मुलाकात करते हैं, ये तो उनको यहाँ नहीं हमें उनके पास जाना है मिलने के लिए। हाकिम था, नेक था, तो ये नहीं कि उनको मेरे पास ले आओ, मैं जाता हूँ मिलने, और अगर ये मिलने ना जाता तो मुलाकात होती भी नहीं। खैर हाकिम जब साथ चला तो साथ साथ एक बड़ा मजमा साथ हो गया, बड़ा मजमा साथ हुआ। ये करीब पहुँचते, गार के करीब पहुँचने लगे तो ये आगे आगे चला गया कि अपने साथियों को इत्तला कर दें। यहाँ से फिर तारीखी रिवायात मुख्तलिफ हैं कि इनकी मुलाकात हुई थी नहीं हुई थी। बज़ाहिर तो ऐसा हुआ कि फिर उसके बाद इनकी मुलाकात हुई, बादशाह से मुलाकात हुई, उनके साथियों से मुलाकात हुई। अल्लाह का इस पर सब ने शुक्र अदा किया, उन्होंने भी, असहाबे कहफ ने भी, कि अल्लाह ताला ने उनको तौहीद पर इस्तिकामत के बरकत से अल्लाह ताला ने उनको कितना बड़ा एजाज से नवाजा। और आवाज आ रही है इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, अलहम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल असहाबे कहफ ने भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, और जो हाकिम और बादशाह और उस जमाने के जो उनके साथी थे उन्होंने भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अब उसके बाद अल्लाह ताला ने इनके लिए मुकद्दर फरमाया था, इनका इंतकाल हो गया असहाबे कहफ का। जब इनका इंतकाल हो गया तो वहीं पर उनकी कब्रें बनाने का फैसला हुआ, कब्रें बना दी गई। उस जमाने में जाहिर है हुकूमत तो अब मुसलमानों की थी, लेकिन ये थे दकियानूस के ज़माने के, बुत परस्ती वाले ज़माने के लोग थे। तो उस वक्त जो मुसलमान थे और गैर मुस्लिम थे, मुसलमान कह रहे थे कि चूंकि ये मोमिन थे, मुवाहिद थे, इस वजह से इनके पास, इनकी कब्रों के पास एक मस्जिद बना दी जाए, लोग मस्जिद में इबादत के लिए भी आया करेंगे और इनकी कब्रों की ज़्यारत करके यानी उनके ईसाले सवाब और बरकत वगैरह हासिल करने के लिए भी यहाँ आ जाया करेंगे। जो लोग गैर मुस्लिम थे उन्होंने कहा नहीं, ये दकियानूस के ज़माने के लोग हैं, हमारे आदमी हैं, जब हमारे लोग हैं तो यहाँ पर मस्जिद ना बनाओ, मस्जिद तो सिर्फ मुसलमानों की होगी, यहाँ पर ऐसा करो कि सिर्फ एक कमरे की तरह कोई जगह बना दो बस, ताकि हम भी आ सकें, मुसलमान भी आएँ, गैर मुस्लिम भी आएँ, हर तरह के लोग आ सकें, ये तो हमारे आदमी हैं। इसका तذکرہ भी आगे आयात में आएगा। खैर, ये असल वाक़या था जो अल्लाह ताला की तरफ से पेश आया, और इसके जो बाकी अज्जा हैं वो आयात के साथ इंशाल्लाह हम पढ़ते रहेंगे। एक और बात आगे चलने से पहले हम ये समझ लें कि ये कहाँ का वाकया है, ये वाकया किस इलाके में पेश आया। एक उसूली चीज़ कुरान करीम के वाकयात समझने के लिए, एक उसूली चीज़ जो जहन में रखनी चाहिए वो ये है कि कुरान करीम वाकयात का सिर्फ इतना ही हिस्सा बयान करता है जिसमें हमारे लिए कोई इबरत और कोई फ़ायदा हो। किस ज़माने का वाकया था उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। तो इसलिए अल्लाह ताला ने वो ज़माने को बयान ही नहीं किया कौन से ज़माने की बात है, कौन से इलाके में वाकया पेश आया उससे हमारे वाकये की इबरत हासिल करने के लिहाज से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। अल्लाह ताला ने जगह भी बयान नहीं फरमाई, और हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि यह वाक़या पेश आया, दुनिया में कहीं पेश आया, इंसानों के साथ पेश आया, बस काफ़ी है। हमें इससे जो सबक हासिल करना है हम कर सकते हैं। हाँ, एक तारीख़ी हैसियत से उस पर यकीन किए बगैर हम अंदाज़े से और तारीख़ी कुछ वाक़यात को देख कर हम बता सकते हैं कि हाँ, तकरीबन ईसा अलैहिस्सलाम के 100 साल बाद का यह वाक़या होगा, लेकिन वो अंदाज़ा हम कर सकते हैं। लेकिन अगर 100 साल ईसा अलैहिस्सलाम के 100 साल बाद हो या 1000 साल बाद हो, वाकये से जो सबक हासिल करना है उसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फिर ये वाकया कहाँ का है, इस सिलसिले में भी जाहिर है कि कोई यकीनी बात कहना मुश्किल है। कदीम मुफस्सरीन तो उस इलाके का नाम वो तरसूस बयान करते हैं कि इस जगह का नाम तरसूस था जहाँ उनकी कब्रें बनाई गईं। आजकल ये तकरीबन 1963 में, वैसे तो अगर देखा जाए तो ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों में ऐसे बहुत से हुए हैं कि राहिब जिनको कहते हैं, वो रहबानियत इब्तदाउहा, के तन्हाई में जंगलों में चले जाते थे, अपनी इबादतों में वक्त गुजारते थे, गारों में रहते थे, वहीं फिर उनका इंतकाल हो जाता, वहीं उनकी कब्रें बनती। तो ऐसे तो कई वाकयात हुए हैं, इसलिए चूंकि ऐसे कई वाकयात हुए हैं तो मुख्तलिफ मुफस्सरीन ने अपने अपने इलाकों में देखा, अच्छा हमारे करीब में भी एक पहाड़ है, उसमें गार है, वहाँ पर कुछ कब्रें हैं। तो मुख्तलिफ मुफस्सरीन ने अपने अपने इलाकों के लिहाज से कह दिया कि देखो हमारे इलाके में असहाबे कहफ की कब्रें हैं, वो हमारे इलाके में हुआ करते थे, जैसा देखा ऐसा बता दिया। लेकिन अभी से कुछ साल पहले 1963 में उर्दुन, जॉर्डन जिसको कहा जाता है, उर्दुन जो है वहाँ पे पहाड़ के पास कुछ कब्रें जाहिर हुईं। असल में वो इलाका रेत में दब चुका था, आहिस्ता आहिस्ता रेत हटी, पता चला कि अच्छा अंदर कुछ है, फिर उसको खोदा गया, साफ किया गया, तो अंदर से कुछ कब्रें और कुछ मस्जिद, पुरानी किस्म की मस्जिद के कुछ आसार मिले। ये जॉर्डन में अमान जो शहर है उसके बिल्कुल, यानी उसके अंदर ही तकरीबन कह ले, वहीं पर एक पहाड़ी है, वहाँ पर ये जगह वाकई है। और जो कुरान करीम की आयात और अगर हाला आयात व आयात को भी देखा जाए और जो तारीखी वाक़यात हैं उसको देखा जाए, तो बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि वहीं पर जो कब्रें हैं, असहाब कहफ की कब्रें जिनका जिक्र मिलता है कुरान वगैरह में, ऐसा मालूम होता है कि वो आयात जो हैं वो उन्हीं के बारे में हैं और वही असहाब कहफ है जिनका वाक़या कुरान में बयान किया गया है, बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है। लेकिन ज़ाहिर कदीम मुफस्सरीन ने इसका तذکرہ इसलिए नहीं किया कि 1963 में ही उनका ज़ुहूर हुआ, पहले तो वो गोया कि ज़मीन के अंदर या मिट्टी के अंदर दफन हो गया था वो इलाका, तो उसको खोदा गया, निकाला गया और साफ़ किया गया तो अंदर से वो ज़ाहिर हुआ। अभी भी वहाँ पर वो कब्रें हैं, कुछ कब्रें हैं और वहाँ मस्जिद, पुराने किस्म की मस्जिद के कुछ आसार हैं जो पहाड़ों में पत्थरों से बनी हुई है। वल्लाहु आलम, अब ये वही है असहाबुल कहफ हैं या कोई और अफराद थे, इसके बारे में यकीनी तौर पर कुछ कहना मुश्किल है। अब हम आयात देख लेते हैं। अम हसिबत अन असहाब अल कहफ व रकीम कानू मिन आयातिना अजबा, क्या आपका ख्याल ये है कि असहाब अल कहफ और असहाब अल रकीम, असहाब अल कहफ और असहाब अल रकीम वो हमारी आयतों में अजीब थे? आगे वाक़या बयान करने से पहले ही अल्लाह ताला ने हमें एक थोड़ा सा हमारी गलत फहमी को दूर कर दिया। वो क्या है, मैं थोड़ी उसकी वजाहत कर दूं कि आम तौर पर इंसान अल्लाह की कुदरत में जो चीज़ें आम तौर पे नज़र नहीं आती, जो आम तौर पे जिससे इंसान को वास्ता नहीं पड़ता, तो उनको ज़्यादा अहमियत देता है। और अल्लाह ताला की कुदरत की वो बातें जो बहुत ज़्यादा आम हैं उनको ज़्यादा अहमियत नहीं देता। मसलन इंसान का अपना वजूद, नुतफे से इंसान का बनना, माँ के पेट के अंदर इंसान का बनना, उसकी हर हर चीज़ का, उसके दिल की हरकत का वहाँ शुरू हो जाना, उसकी आँखें, उसके कान, उसके तमाम सलाहियतें, पेट के अंदर तमाम चीज़ों का बन जाना, ये इतना अजीब है। फिर उसके अलावा आसमान और ज़मीन, सूरज और चाँद का निज़ाम और ये हर हर चीज़, फिर अजीब अजीब अल्लाह ताला की मखलूकात, समुंदरों में मखलूकात हैं, ज़मीन के अंदर मखलूकात हैं, हशरात, कीड़े मकोड़े, उनकी बारीकियां, शहद की मक्खी, हर हर चीज़ अगर देखा जाए तो इतनी अजीब अल्लाह की कुदरतें हैं कि उनके मुकाबले में अगर कोई ये देखा जाए कि कोई शख्स 300 साल सो के उठ गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये अल्लाह ताला हमारे अक्लों को ज़रा दुरुस्त करना चाह रहे हैं कि तुम असहाबुल कहफ के वाक़े को इतना अजीब क्यों समझते हो, उसमें क्या बड़ी बात है। हाँ ये बात तो है कि अजीब बात है कि 300 साल तक वो सोए थे, जो आम आदत के ख़िलाफ़ है, खरक़ आदत है, वो बात सही है, लेकिन बाकी अल्लाह की निशानियों को क्या तुम भूल जाते हो? क्या सूरज के निज़ाम, चाँद का निज़ाम, सितारों का निज़ाम, ज़मीन में पैदावार का उगना, एक बीज है उससे दरख्तों का और कई फलों का वजूद में आना, क्या इन चीज़ों को तुम भूल जाते हो और बस एक चीज़ के उतने 300 साल सो गए थे उसको तुम अजीब समझते हो? ये हमारे अकलों को अल्लाह ताला ज़रा ठीक कर रहे हैं। जैसे हम लोगों में होता है कि अगर कोई शख्स, हमारे लोगों में तो ये बहुत होता है कि अगर कोई शख्स शरीयत पर मुकम्मल अमल करने वाला हो, सुन्नतों के इत्तिबा करने वाला हो, उसको तो समझते हैं कि अच्छा ये आम आदमी है। अगर कोई शख्स खिलाफ खरक आदत कोई चीज़ जाहिर कर दे, उससे कोई करामत जाहिर हो जाए, तो समझते हैं ये बहुत बड़ा बुजुर्ग है। हालांकि असल बुजुर्गी तो शरीयत की इत्तिबा और सुन्नत की इत्तिबा में है, लेकिन हमने उसको बिल्कुल किसी और चीज़ में समझ लिया। कोई ज़्यादा मशहूर है, कोई ज़्यादा बड़ा बन रहा है, कोई ज़्यादा उसकी लोगों में बहुत ज़्यादा बड़ा मजमा है, जैसे हमारे यहाँ होते हैं बड़े जलसे वगैरह होते हैं, लेकिन जो बेचारे ऐसे हैं जो दीन से ज़रा दूर हैं उनके प्रोग्राम होते हैं तो लाखों का मजमा जमा कर लेते हैं, तो क्या मजमे का बड़ा होना और ज़्यादा होना ये उनके कोई अल्लाह के यहाँ मकबूल होने की अलामत है? नहीं, ये इंसान की बहुत सी मर्तबा सोच गलती करती है। अल्लाह ताला ने इस सोच को यहाँ दुरुस्त किया कि देखो अल्लाह की कुदरत के बारे में सही और गलत को पहचानो, और अल्लाह की कुदरत के बारे में ये सोचो कि अल्लाह की कुदरत सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है कि गार असहाबुल कहफ 300 साल सो गए थे, बल्कि बड़ी चीज़ तो है कि उन्होंने शरीयत पर अमल किया और अल्लाह ताला ने उनकी मदद की और नुसरत की थी। दीन पर अमल वो असल चीज़ है, वो असल बड़ी चीज़ है। अम हसिबतन्ना असहाबल कहफ व रकीम कानू मिन आयातिना अजबा, क्या आपका ख्याल ये है कि असहाबुल कहफ और असहाबुल रकीम वो हमारी आयतों में अजीब थे? आ गया अल्लाह ताला फिर वाकया बयान फरमाते हैं। अजीब थे का मतलब यह कि क्या ये अजीब था और दूसरी निशानी अजीब नहीं है, ये भूल ना जाओ दूसरी निशानी भी अल्लाह की अजीब है। इज अवल फितयतु इलल कहफ फकालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहयि लना मिन अमरिना रशदा। उस वक्त को याद करो जब ये नौजवान गार की जानिब गए, यानी गार में पनाह लेने के लिए ठहरने के लिए चले गए, असबाब इख्तियार किए अपने हिफाजत के। तो असबाब इख्तियार करने के साथ साथ फिर क्या किया, दुआ की। फ़क़ालू रब्बुना, उन्होंने दुआ की हमारे परवरदिगार, रब्बुस समावाति वल अर्द, इज़ अवल फितयतु इलल कहफ फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनक रहमा, रब्बना आतिना मिन लदुनक रहमा, ए हमारे परवरदिगार हमें अपनी जानिब से ख़ास रहमत अता फरमा और हमारे लिए हमारे काम में दुरुस्ती अता फरमा दे। यानी एक तो यह है कि रहमत हो आपकी तरफ से, जब आपकी तरफ से रहमत होगी तो हमारे लिए सहूलत होगी, हर काम में मदद होगी और सहूलत होगी। और दूसरा है कि हम जो काम करें रशदन सही काम करें, आपकी हिदायत आपकी मर्ज़ी के मुताबिक काम करें। इसमें अल्लाह ताला ने हमें सबक दिया कि देखो दुनिया के बड़े से बड़े तुम काम कर लो, उसके लिए करना क्या होगा, दो चीज़ें करनी होंगी, एक असबाब इख्तियार करो, दूसरा अल्लाह से दुआ मांगो। बाज़ लोग सिर्फ दुआ करके छोड़ देते हैं कि नहीं हम तवक्कुल कर रहे हैं, ये भी गलत है। और बाज़ लोग सिर्फ असबाब इख्तियार करते हैं, बल्कि एक है अक्सर कह सकते हैं कि अक्सर लोगों का हाल ये होता है कि सिर्फ असबाब इख्तियार करते हैं, सिर्फ असबाब इख्तियार करते हैं और असबाब इख्तियार करने के अलावा दुआ का एहतमाम नहीं करते। तो खैर अल्लाह ताला ने हमें यहाँ ये सिखाया कि दोनों काम करने हैं, दोनों काम करने हैं, एक तो ये है कि असबाब भी इख्तियार करो और फिर अल्लाह ताला से दुआ भी मांगो। बहुत सी मरतबा हम लोगों को तवक्कुल के माना समझने में भी गलती होती है। बहुत से लोगों का ख्याल ये होता है कि तवक्कुल अल्लाह पर भरोसा करना और तवक्कुल इसको कहते हैं कि इंसान कुछ भी ना करे सिर्फ अल्लाह ताला पर भरोसा करके बैठ जाए कि अल्लाह मेरा हर काम कर देगा। और आमतौर पर यह होता है किन चीज़ों में, कभी तो दीन के मामले में होगा कि नहीं चलो अल्लाह ताला गफूर रहीम है, तवक्कुल करके बैठ जाते हैं कि आखिरत में अल्लाह ताला आसानी करने वाला है। जो काम हमें करने में सुस्ती हो रही है तवक्कुल करके बैठ जाते हैं, लेकिन जब भूख लगी होती है तो तवक्कुल नहीं करते कि अच्छा खुद ब खुद खाना पेट में चला जाएगा और अल्लाह ताला पर भरोसा कर लें कि खुद पेट भर जाएगा, लुकमा मुँह भर के मुँह में आ जाएगा, वहाँ पर तवक्कुल नहीं होता हमारा। तो तवक्कुल के बहरहाल ये मतलब होता ही नहीं है कि इंसान असबाब को बिल्कुल छोड़ दे। तवक्कुल का मतलब ये है जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि असबाब इख्तियार करो, और जैसे असहाबे कहफ के वाक़े में अल्लाह ताला ने हमें सिखाया कि देखो असबाब इख्तियार करो, उन्होंने अपने इलाके को छोड़ा गार में चले गए, लेकिन आगे फिर क्या होगा, कैसे ठहरेंगे, आगे क्या होगा, दुआ कर ली। रब्बुना फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यिल लना मिन अमरिना रशदा। तो ये हमारे लिए एक उसूल समझ में आया कि असबाब भी इख्तियार करो और दुआ भी करो। और जब ये दोनों काम करने के बाद भी फिर दो किस्म के लोग होते हैं, बाज़ होते हैं जिनकी पूरी नज़र असबाब पर होती है, दुआ को साथ में शामिल कर लेते हैं। होना ये चाहिए कि असबाब भी इख्तियार किए जाएँ, दुआ भी की जाए और उसके बाद जहन अल्लाह की तरफ हो कि या अल्लाह ये हमारी कोशिश के मुताबिक हमने किया, या अल्लाह उसका नतीजा उसका अंजाम तेरे इख्तियार में है तो उसमें कोई अच्छा नतीजा और अच्छा अंजाम जाहिर फरमा दे। अब भरोसा अल्लाह पर हो कि या अल्लाह अब तेरी तरह तेरे हवाले है। इंसान जब सोता है तो सोते वक्त भी जो दुआ हमें सिखाई गई कि या अल्लाह दिन भर हमने ये कोशिश की ये कोशिश की ये किया ये किया, अब सोते वक्त दुआ क्या पढ़ते हैं हम, अल्लाहुम्म इन्नी असलम तो नफ्सी इलैक ववज्जह तो वजही इलैक वफवस्त अमरी इलैक। ये जो दुआ है कि मैंने हर चीज़ पूरे दिन की कोशिशें तो कर चुका, अब सब कुछ मैं तेरे सुपुर्द करके सो रहा हूँ, तेरे ऊपर भरोसा है कि अब इस पर जो मैंने मेहनत की है उसका सही नतीजा ज़ाहिर हो जाए। इज़ अवल फितयतु इलल कहफ फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन वहय्यिल लना मिन अमरिना रशदा। फ़ضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا। अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल फरमाई, गार में पहुँचे, फ़ضربنا على آذانهم, हमने ضربنا علی آذانہم اس کا لفظی ترجمہ بعضوں نے کیا ہے، بعضوں نے اس کا مفہوم کے لحاظ سے ترجمہ کیا ہے. ضربنا علی آذانہم کا لفظ جب عربی میں استعمال ہوتا ہے تو نتیجے کے لحاظ سے اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ گہری نیند ان کو سلا دیا. کیوں ضربنا علی آذانہم؟ کانوں پر ضرب علی آذانہم، کانوں پر مارنا، جیسے ماں بچے کو سلاتی ہے چھوٹے بچوں کو تو کانوں کے پاس اس پر ہاتھ پھیر کے ہلکا ہلکا ہاتھ مار کے سلا دیتی ہے، بچہ گہری نیند سو جاتا ہے. گویا اس کے ساتھ ایک تشبیہ ہے، کانوں پر تھپکی دی. بہرحال اس کو گہری نیند سلانے کے مفہوم میں کیوں لیا جاتا ہے، اس کو بھی علماء نے بیان کیا کہ انسان جب سوتا ہے تو سونے میں سب سے اخیری چیز جو اس کے حواس میں سے، جیسے کہ انسان کا حادثہ ہوتا ہے دیکھنے کا سونگھنے کا، یہ جو حواس خمسہ کہلاتے ہیں، تو اخیری چیز انسان کے حواس میں سونے والی اس کے کان ہوتے ہیں. انسان کبھی سویا ہوتا ہے، اب اپنے بارے میں کسی نے نہ سوچا ہو تو اب سوچ سکتا ہے کوئی، کہ انسان جب سوتا ہے تو سوتے وقت انسان بسا اوقات آنکھیں بند ہیں، تھوڑا سا نیند میں جا چکا ہے، کچھ خواب کے آثار بھی ہیں، لیکن پاس کوئی بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے تو اس کی آوازیں بھی ہلکی ہلکی آ رہی ہیں، کوئی گہری نیند نہیں سویا. یہ تو شروع، جب گہری نیند سو جاتا ہے تو آواز بھی نہیں آ رہی ہے، قریب میں کوئی باتیں بھی کر رہا ہے تو آواز نہیں آ رہی. اور اٹھنے میں سب سے پہلے کان اٹھتے ہیں، کسی کی بات، کسی کی آواز کان میں پڑ گئی، الارم کی آواز کان میں پڑ گئی، تو پہلے اٹھنے والے کان ہوتے ہیں، پھر وہ دوسرے حواس اٹھ جاتے ہیں. تو ضربنا علی آذانہم کے معنی ہوئے کہ ہم نے ان کو گہری نیند سلا دیا، ہم نے ان کو گہری نیند سلا دیا غار میں، سنین عددن، کئی سالوں کے لیے. اب اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کئی سال تک وہ غار میں سوئے تھے. پھر ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا، پھر ہم نے ان کو بیدار کیا، سلانے کے بعد کئی سال تک سولہ سلانے کے بعد پھر ہم نے ان کو بیدار کیا. اب ہم اگر دیکھیں اسباب کے لحاظ سے تو وہ غار میں چلے گئے تھے، لیکن غار میں جا کر بیچارے یہ مالدار گھرانے کے افراد تھے، کوئی عام فقرا نہیں تھے جن کو زمین پتھروں پر وہ سو سکتے ہوں، عام یہ بیچارے مالدار گھرانے کے افراد تھے. اور ان کے ساتھ یعنی جب جا رہے تھے تو بظاہر یہ کہ کوئی یعنی بہت زیادہ مال و دولت بھی ساتھ لے کے تو نہیں گئے ہوں گے، چھپ کر گئے تھے، تھوڑے بہت پیسے جو تھے وہ ساتھ رکھ لیے تھے. اب وہاں جا کر پہاڑوں میں، پہاڑ کی غار میں جا کر جب وہ ٹھہرے ہیں تو وہاں جا کر اب وقت گزارنا بھی تو آسان نہیں تھا. سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرما لی، وقت گزر گیا ان کا، ورنہ وہ کیا کرتے، ایک دن دو دن گزار بھی لیتے، چند دن گزار لیتے، پھر کیا کرتے. خیر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی یہ کر دی کہ نیند آ گئی ان کو، نیند آ گئی، 300 سال کیسے گزر گئے ظاہر ان کو پتہ ہی نہیں چلا. ثم بعثناهم، پھر 300 سال سونے کے بعد جب وہ اٹھے ہم نے ان کو پھر بیدار کیا، لنعلم ای الحزبین احصى لما لبثوا امدا، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ دونوں گروہوں میں سے، ایک تو تھے اصحاب کہف، ایک تھے باقی لوگ، تو دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت کو یاد ہے، کون سی جماعت نے یاد رکھا، لما لبثوا امدا، کہ کتنی مدت وہ غار میں ٹھہرے ہیں. اصحاب کہف کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ سمجھ رہے تھے ایک دن دو دن ہم سوئے ہیں. وہاں کے اس زمانے کے لوگوں کو پتہ چلا کہ نہیں نہیں تو 300 سال پہلے کے لوگ ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس تختی پر نام لکھے ہوئے ہیں اور تاریخ لکھی ہوئی ہے. تو ایو الحزبین، یہ دو جماعتیں تھیں، اصحاب کہف کی ایک جماعت جو سوئے تھے اور اس زمانے کے حاکم، اور وہاں اس زمانے کے جو باقی لوگ تھے، تو ان باقی لوگوں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ 300 سال رہے ہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی ان کی مدت کو بیان فرمائیں گے کہ 300 سال یا 309 سال وہ غار میں سوئے رہے تھے. یہاں تک ایک مختصر واقعے کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. اب یہاں سے یہ دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، یہاں سے اب اللہ تعالیٰ واقعے کی کچھ تفصیل بیان فرما رہے ہیں. اب چونکہ اصل واقعہ تو ہمارے سامنے آ گیا، اب یہاں سے آئندہ ہفتے انشاءاللہ ہم یہاں تک اب روک دیتے ہیں، آئندہ ہفتے یہاں سے انشاءاللہ آگے چلیں گے. لیکن اب یہ ہے کہ بس آیتوں کو پڑھتے جائیں گے اور انشاءاللہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سبق دیا ہے وہ سمجھتے جائیں گے. اصل واقعہ تو آ چکا ہے، تو انشاءاللہ اب یہ واقعہ آئندہ ہفتے ختم کرنے میں انشاءاللہ اس میں دیر نہیں لگے گی. یہ ہے اصحاب کہف کے واقعے کی بنیاد. اس میں ہمارے لیے جو بنیادی سبق ہے وہ تو کچھ آیتوں میں آگے بھی آئے گا، بنیادی سبق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ دیکھو جب دین کی خاطر کوئی مشقت اٹھانے کا موقع آئے، کوئی قربانی دینے کا موقع آئے، تو
तो ये ना सोचो कि आगे क्या होगा, बहुत दूर का ना सोचो, ये सोचो कि देखो अगर अल्लाह की मर्ज़ी इस अमल में है तो हमें ये काम करना है, अल्लाह की मर्ज़ी इस काम में है तो हमें ये काम करना है। इसकी बड़ी अच्छी एक मिसाल है, इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल दी गई है कि, और हर एक ने देखी होगी इस तरह के जगह, कभी इंसान जब सफ़र में जा रहा होता है, किसी जगह जा रहे होते हैं गाड़ी में, और दोनों तरफ दरख्त होते हैं, रोड अगर सीधा है तो इंसान जब दूर देखता है तो ऐसा नज़र आता है कि आगे तो रास्ता बंद हो रहा है। ये देखने का ऐसे ही होता है इंसान को जब नज़र आता है कि रोड है सीधा जा रहा है, दोनों तरफ दरख्त हैं, तो दूर तक अगर देखें तो ऐसा लगता है कि दोनों तरफ के दरख्त जुड़ रहे हैं। अगर इंसान ये सोचेगा कि नहीं आगे तो रास्ता है ही नहीं, इसलिए कि दोनों साइड के दरख्त तो जुड़े हुए हैं और रास्ता बंद नज़र आ रहा है, अगर इंसान ये सोचकर पहले से ही रुक जाएगा तो कभी भी आगे वो सफ़र तय कर ही नहीं सकेगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि अभी जो रास्ता नज़र आ रहा है वो इख्तियार कर लो, आगे अल्लाह ताला पर अल्लाह ताला से दुआ करके भरोसा करके चलते रहो। ये असहाबे कहफ के वाक़े में भी अल्लाह ताला ने हमें सिखाया। अगर ये लोग सोचते कि नहीं हम गार में जाके फिर क्या करेंगे, फिर आगे 1-2 दिन के बाद या 3-4 दिन के बाद फिर क्या होगा, अगर वो लंबी तफसीलात सोचते रहते तो अपने आप अपने दीन को बचाना उनके लिए मुश्किल हो जाता। उन्होंने सोचा कि नहीं, अभी हमारे असबाब में, हमारे अल्लाह ताला ने हमें जो असबाब दिए हैं हम इतना कर सकते हैं, इतना कर लिया, आगे का अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। अल्लाह ताला ने किस तरह उनकी मदद की कि उस वक्त उनकी हिफाजत की, और कुरान करीम में क़यामत तक पढ़े जाने वाले वाक़यात में अहम तरीन वाक़िया अल्लाह ताला ने इनके असहाबे कहफ के वाक़े को करार दिया। ये अल्लाह ताला की जब नुसरत आती है तो फिर आसमान ज़मीन हर चीज़ अल्लाह के ताबे है। अल्लाह ताला किस तरह हिफाजत फरमाते हैं वो अल्लाह का मामला है, दुआ अल्लाह से करनी है, असबाब हमें इख्तियार करने हैं। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ भी अता फरमाए, और इन आयात में जो हमें अल्लाह ताला जो तालीम देना चाहते हैं, जो सिखाना चाहते हैं अल्लाह ताला, उस पर हमें सही तौर पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।